बोलती कहानियां
रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम राज ऋषि की कहानी बर्थ नंबर 3 शीतल माहेश्वरी के स्वर में। तो आइए सुनते हैं बर्थ नंबर 3।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
हावड़ा से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस गजब ही विलंब से चल रही थी। इस पार की आई बाढ़ कहीं रास्ते में रेल की पटरियों को भी आंशिक रूप से डुबो रही थी, तो इस रास्ते की कई ट्रेनें धीमी रफ्तार में अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय ले रही थी। गया स्टेशन पर प्रतीक्षारत यात्रियों के व्याकुल मजमे में वो दो युवा भी जून की उस उमस भरी बेहाल सी रात से जूझते हुए प्लेटफॉर्म पर हो रही उद्घोषणा पर कान टिकाए बैठे थे। अमूमन 10:30 बजे तक आ जाने वाली राजधानी 1.5 घंटे देरी से चल रही थी। तू बेकार में आ रहा है अरविंद, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से ट्रेन भी लेट। मैं तो आराम से अपने बर्थ पर दिल्ली तक सोता हुआ चला जाता। माथे से टपकते पसीने के सैलाब को एक हाथ से पोंछते हुए सुदेश ने कहा, चल बे ज्यादा बन मत, तो एक ही बात को बार बार दोहरा कर, गौतम बुद्ध की नगरी और उस बोधि वृक्ष के नीचे तुझे बैठाने का वादा मेरा ही था, और वैसे भी मुझे तो बहाना चाहिए था इन छुट्टियों में तेरे संग दिल्ली जाने का, घर में भी क्या करता बैठकर। अरविंद ने थोड़ा तुनक कर जवाब दिया। गर्मी से उबल रही इस रात का असर जैसे प्लेटफॉर्म पर टंगी उस विशालकाय घड़ी पर भी जबरदस्त रूप से हो रहा था कि घड़ी की सुई सबसे मध्यम गति में चलने का विश्व कीर्तिमान बनाने पर तुली हुई थी। सुदेश अब थोड़ा परेशान सा दिखने लगा था। पैर में गर्मी से हो रही चुभन धीरे धीरे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और साथ ही सिगरेट की तलब, पर प्लेटफॉर्म से बाहर दूर चलकर जाने की दुश्वारी अपना लगी अंकुश लगाए हुए थी। चुभन, बर्दाश्त, तलब और दुश्वारी की एक साथ मची चीख पुकार से रात ने तरस खाकर जैसे आत्मसमर्पण ही कर दिया और विश्व कीर्तिमान बनाने की जिद पर बैठी हुई घड़ी अर्धरात्रि से बस थोड़ा सा ऊपर का समय दिखाने लगी थी जब राजधानी हाफती सी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। अरविंद ने सुदेश का भी बैग उठा लिया। बोगी A3 अपनी तयशुदा स्थान से तनिक आगे खिसक कर रुकी थी। तत्काल में लिए गए टिकट ने दोनों दोस्तों को बोगी तो एक ही दिया, लेकिन बर्थ अलग अलग। सुदेश बाथरूम के साथ लगे हिस्से के 3 नंबर वाले लोअर बर्थ पर था और अरविंद थोड़ा आगे 24 नंबर वाले साइड अपर बर्थ पर। अरविंद बोगी के दरवाजे तक पहुंचकर सुदेश के लिए रुक गया, जो बस थोड़ा सा पीछे कुछ कुछ लंगड़ाता सा आ रहा था। अरविंद का हाथ पकड़ ऊपर चढ़कर जब सुदेश अपने बर्थ के पास पहुंचा, तो वहां पहले से कोई अधेड़ पुरुष गहरी नींद में हल्के हल्के खर्राटे ले रहा था। बगल वाले बर्थ पर एक अपेक्षाकृत मोटी सी स्त्री लेटी हुई थी और उसके ठीक ऊपर वाले पर एक लड़का। अरविंद ने सुदेश का बैग नीचे सरकाते हुए, उठाओ भाई साहब को, मैं आता हूं अपनी सीट देखकर, झल्लाते हुए कहा। सुदेश ने अपनी जन्मजात विनम्रता के अधीन झिझकते हुए उस सोए व्यक्ति को थोड़ा सा हिलाते हुए कहा, भाई साहब उठिए, ये सीट मेरी है। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अधलेटे से पुरुष की झुंझलाहट में निश्चित रूप से एक अभिजाति सा दंभ था। सर, दिस इज माय सीट। सुदेश ने अपनी उस नीम अंधेरे कूपे में भी अपनी टिकट दिखाते हुए कहा, गेट लॉस्ट, लेटी हैज गिवन मी दिस सीट, डोंट यू डेयर बॉदर मी। उस व्यक्ति की तेज आवाज सुदेश के पैरों की चुभन बढ़ा रही थी। तभी क्या हुआ सुदेश, की हुंकार लेकर अरविंद आ टपका। अरविंद के त्वरित गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ सुदेश ने अपनी मुस्कान में नथिंग टू वरी का उद्घोष लपेटकर उससे कहा कि वो टीटी लेकर आए। इस बीच उस व्यक्ति की आवाज से बगल वाली स्त्री और ऊपर लेटा हुआ लड़का भी जग गए थे। क्षणश भर बाद ही स्पष्ट हो गया था कि तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे और उस स्त्री के साथ साथ अब वो लड़का भी सुदेश पर रुक रुक कर इंग्लिश और हिंदी के मिश्रण में डूबे वाक्य बाणों की बारिश कर रहे थे। टीटी के आगमन ने तुरंत ही तमाम उलझनों को दरकिनार कर दिया। सुदेश का टिकट देखकर टीटी ने उस अधेड़ पुरुष से माफी मांगी और कहा कि ये सीट इसका ही है और आपको वापस अपने ऊपर वाले बर्थ पर जाना पड़ेगा। मैंने जल्दबाजी में आपको ये सीट अलॉट कर दी थी। तीन तरफ से बरस रहे हिंदी इंग्लिश मिश्रित गोलेबाजी पर जैसे किसी सन्नाटे ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अरविंद को व्यंग करने का सुनहरा मौका मिल गया था, लेकिन सुदेश ने उसे धकेलकर अपनी बर्थ पर भेज दिया और अपनी तमाम इच्छा शक्ति को संजोकर बड़े धैर्य से उस व्यक्ति द्वारा सीट खाली करने की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक सन्नाटे के आधिपत्य से किसी तरह कुनमुनाकर निकली एक आवाज सुदेश से विनती कर रही थी, भाई साहब यदि आप अपर बर्थ ले लेते हैं, एक्चुअली मेरे पापा को कमर में पेन है, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब अप। स्त्री के ऊपर वाले बर्थ पर लेटा वो लड़का बड़ी आतुरता से कह रहा था सुदेश से, सॉरी आई कांट। सुदेश की मुस्कान उसके होठों का साथ नहीं छोड़ रही थी। उन्हें मैनेज करना होगा किसी तरह, मुझे अपने ही सीट पर सोना है, आई एम रियली सॉरी। जिसे सुनने के बाद बगल वाली स्त्री की भुनभुनाहट वापस शुरू हो गई थी। आजकल की यंगस्टर्स नो सिविक सेंस वगैरह वगैरह वाले जुमलों में लिपटी भुनभुनाहट, जिससे बेपरवाह सा दिखता सुदेश व्यस्त था अपने जूते उतारने में। दाहिने पैर के जूते ने बाएं वाले पैर के जूते से कुछ ज्यादा ही समय लिया उतरने में और सीट पर लेटते ही सुदेश सब कुछ भूल अपनी चैन सुकून निश्चिंतता की दुनिया में जा चुका था। सुबह का आना एक दूसरे किस्म की खामोशी लिए हुए था उस बर्थ नंबर 3 के सहयात्रियों की जुबानों पर। दरअसल ये बताना मुश्किल था कि उन सहयात्रियों की आंखों में हैरानी ज्यादा थी या फुसफुसाती जबानों पर एक तरह का अपराध बोध। लेकिन उस हैरानी या कथित अपराध बोध सबसे अनजान बर्थ नंबर 3 का यात्री चित्त सीधा लेटा हुआ गहरी नींद में था। नीचे वाले दोनों बर्थ के बीच वाली खाली जगह में रखा हुआ उसके दाएं पैर का जूता बाएं पैर के जूते से बहुत बड़ा और घुटने की लंबाई तक उठा हुआ साक्षात घुटनों से नीचे तक के पैर के सदृश था। बर्थ पर चित्त सोए यात्री के बदन पर ओढ़ा हुआ कंबल खिसककर नीचे गिरने को था और जिससे झांक रहा था बाहर उसका घुटने तक कटा हुआ आधा पैर। तभी दोनों हाथ में चाय की कुल्लड़ थामे उठ ओ कुंभकर्ण की औलाद की पुकार लिए अरविंद आकर बैठा और चाय को सामने टेबल ट्रे पर रखकर उसके पैरों को कंबल से ढक दिया। गुनगुनाता सा सुदेश अबे सोने दे अभी की गुहार लगाकर करवट बदल गया। सामने के बर्थ पर बैठे तीनों सहयात्रियों की चुप्पी को फिर उसी लड़के ने निस्ता नाबूद किया। What happened to him? पहले तो बड़ी देर तक अरविंद सामने बैठे तीनों को घूरता रहा और एक बिल्कुल ही ठहरी सी आवाज में एक एक शब्द को मानो चबाते हुए बोल उठा, ही इज अ वॉर हीरो, कारगिल के युद्ध में घायल हुआ है, ये मरते मरते बच गया, लेकिन आप लोगों से ज्यादा जिंदा है। इसी कुपे की खिड़की के शीशों को बेध कर आती हुई राजधानी एक्सप्रेस की खटर पटर अरविंद के उस वक्तव्य के बाद पसरी हुई खामोशी को एक अजीब सा पार्श्व संगीत प्रदान कर रही थी। वहीं कहीं से खिड़की के शीशे पर लटके हुए उस खटर पटर को तोड़कर कल रात तक किसी छद्म अभिजात के दम में लिपटे उस अधेड़ पुरुष ने कुछ झिझक या कुछ उलझन से गुथा हुआ अपना सवाल उछाला, ओ आप लोग आर्मी से हैं? जी मैं मेजर अरविंद सिन्हा और ये डेढ़ पैर वाला मेजर सुदेश सिंह वीर चक्र, जिसने अकेले दुश्मन की एक चौकी को ध्वस्त किया था और बाद में दुश्मन द्वारा बिछाई गई माइंड फील्ड में अपना आधा पैर दे आया था। जाने कैसा तो आक्रोश था अरविंद की आवाज में। चाय दे बे मेरी, तभी सुदेश की आवाज आई। वी आर रियली वेरी वेरी सॉरी कल के लिए, हमें मालूम नहीं था कि आप, अधेड़ पुरुष बोल रहा था, जिसे बीच में ही काटकर सुदेश कह उठा, किस लिए सॉरी? मैं आर्मी ऑफिसर हूँ इसलिए, या मैं वुंडेड हूँ इसलिए? मेरी जगह कोई और होता तब क्या तब भी आप सॉरी होते? अगर नहीं तो फिर ये सॉरी कोई मायने नहीं रखती सर। क्षण भर बाद चाय पीते हुए सुदेश और अरविंद किसी बात पर ठहाके लगाते दिखे, ठहाका जो राजस्थानी की खटर पटर के साथ बिल्कुल ताल मिला रहा था।
Radio Playback India.